दूसरा शीर्षक है परंपरा और गतिशीलता। रूढ़ी और परंपरा। सामान्यतः आज परंपरा को देखकर चलने वाला, गतानुगतिक और उससे उच्छिन्न होकर चलने वाला प्रगतिशील माना जाता है। यह जितना लोक व्यवहार में सत्य दिखाई पड़ता है, उतना ही काव्य में भी। सृजन की नवीनता और मौलिकता के चक्कर में पड़े हुए आज के अनेक कवि जिस उच्छृंखलता की सृष्टि कर रहे हैं, वह किसी सहृदय से छिपा नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि वे रूढ़ी या गतानुगतिकता को परंपरा का पर्याय मान लेते हैं, अथवा उनके अंतर को समझने में भूल करते हैं। रूढ़ी परंपरा का अंग जरूर है, पर वह परंपरा का गलत अंग है। परंपरा में और भी बहुत कुछ है। जब कालिदास ने कहा कि पुराणमित्तेव न साधु सर्वम, तो उनका मतलब कदाचित परंपरा के रूढ़ी तत्व से ही था। यह रूढ़ी तत्व साधु नहीं माना जा सकता। ये रूढ़ियां सब समय रूढ़ियां नहीं रही होगी। प्रारंभ में और उसके बहुत समय बाद तक उसका खास प्रयोजन रहा होगा। परंपरा के साधु असाधु तत्वों को अलग करने के लिए विवेक की आवश्यकता होती है। इसके द्वारा ही हम ग्राह्य तत्वों को स्वीकार्य तथा अग्राह्य तत्वों को अस्वीकार्य करार देते हैं। किसी देश के साहित्य, दर्शन, संस्कृति आदि की विशिष्ट परंपरा होती है। व्यक्ति का कृतित्व उस परंपरा की एक कड़ी के रूप में ही ग्राह्य होगा। उसका मूल्यांकन करते समय आवश्यक होगा कि तत्संबंधी सुदीर्घ परंपरा को बराबर ध्यान में रखा जाए। इस नए जोड़ के कारण परंपरा की स्थिरता आंदोलित हो उठती है और आलोचक को नए सिरे से मूल्यांकन करना पड़ता है। ऐसा करना तभी जरूरी समझा जाएगा जब नवीन कृतित्व के कारण परंपरा में कुछ नया जुड़ा हो, और यह नया तभी जुड़ सकता है जब समूची परंपरा की चेतना रचयिता को प्राप्त हो। टी.एस. एलियट ने परंपरा को बहुत ही व्यापक और गंभीर महत्व दिया है। यह किसी को विरासत में नहीं मिलती, इसे परिश्रम पूर्वक अर्जित करना पड़ता है। इसके मूल में एक ऐतिहासिक चेतना अनुस्यूत है। एलियट के मतानुसार जो 25 वर्ष के बाद कवि बना रहना चाहता है, उसके लिए चेतना की उपलब्धि आवश्यक है। ऐतिहासिक चेतना का तात्पर्य है कि अतीत के व्यतीत और उसके वर्तमान के प्रति पूर्ण जागरूकता। इसे दूसरे शब्दों में यूं कहा जा सकता है कि परंपरा के अंतर्गत द्रव्यों के साथ साथ वर्तमान जीवंत द्रव्यों के प्रति सचेत रहना कवि का कर्तव्य है। उसे केवल अपने युग के प्रति ही सचेत नहीं रहना होगा, बल्कि समूची काव्य परंपरा के प्रति जागरूक रहना होगा। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या सत्सई रीतिबद्ध काव्य है? बिहारी ने 700 दोहे वाली जिस सत्सई की रचना की, उसकी परंपरा बहुत पुरानी है। बिहारी उसकी परंपरा की एक कड़ी के रूप में आते हैं। बिहारी की ऐतिहासिक चेतना के प्रति संदेह नहीं प्रकट किया जा सकता। इस चेतना को उन्होंने विरासत में नहीं पाया था, बल्कि परिश्रम पूर्वक अर्जित किया था। इसके प्रमाण में उनकी सत्सई को पेश किया जा सकता है। हाँ, यह दूसरा सवाल है कि उस परंपरा में उन्होंने कितनी रूढ़ियों को ग्रहण किया है और कितने प्रवाहमान साधु तत्वों को। क्या उनकी सत्सई ने भारतीय काव्य परंपरा में कुछ ऐसा जोड़ दिया कि समूची परंपरा का पुनः समंजन आवश्यक है? बिहारी सत्सई को लेकर चलने वाले विवादों के संदर्भ में इन प्रश्नों का महत्व और भी बढ़ जाता है। यद्यपि पंडित पदम सिंह शर्मा ने बिहारी की आलोचना करते समय दाद देने वाली आलोचनात्मक पद्धति ही अपनाई, फिर भी उस सिलसिले में एक महत्वपूर्ण काम यह हो गया कि गाथा सप्तसती, आर्या सप्तसती, अमरु शतक आदि की गाथाओं और श्लोकों के समानांतर रखे जाने वाले बिहारी के दोहों की उद्धरणी प्रस्तुत हो गई। बाद में कुछ आलोचकों में बिहारी में अंधानुकरण की प्रवृत्ति के न होने की सराहना की, पर बीच बीच में जहां अनुकरण नहीं है, वहां भी अनुकरण सिद्ध करने की मौलिकता भी दिखलाई। ऐसे स्थिति में शर्मा जी की ऐतिहासिक चेतना का विवेचन अपना महत्व रखता है। बिहारी को रीति कवियों में रखने का परिणाम यह हुआ कि उनकी रचनाओं में रीति तत्व निकलने की घुड़दौड़ मच गई। यहाँ तक कि नई से नई पुस्तकों में भी इसके लिए काफी पृष्ठ देने पड़े। बिहारी की रीतिबद्धता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। साधारणतः विश्वास किया जाता है कि इस कवि ने अपनी सतसई की रचना रीति काव्य की दृष्टि से ही की थी, क्योंकि उनके दोहों को देखकर यही अनुमान होता है कि किसी न किसी नायिका का लक्षण उनके मन में अवश्य उपस्थित था। पुराने सहृदयों को भी यह बात लगी थी, क्योंकि कभी कभी इन दोहों को नायिका भेद के उपक्रम में सजाया गया और नए सहृदयों को भी अनुभूति हुई है। परंतु इस बात से केवल यही सिद्ध होता है कि बिहारी के प्रशंसक रीति मनोवृत्ति के सहृदय थे। स्वयं बिहारी भी रीति ग्रंथों के अच्छे जानकार रहे होंगे, इसमें संदेह नहीं, किंतु उनके प्रत्येक दोहे में किसी न किसी नायिका को खोज लेना यह नहीं सिद्ध करता कि वे रीति ग्रंथ लिख रहे थे। अमरूप शतक के श्लोक नायिका भेद की चर्चा करने वालों के बहुत प्रिय रहे हैं, परंतु इसलिए यह नहीं कहा जाता कि अमरूप शतक नायिका भेद का ग्रंथ है। हाल की प्राकृत भाषा में लिखी गई गाथा सप्तशती और गोवर्धन की संस्कृत भाषा में लिखी गई आर्या सप्तशती के प्रत्येक गद्य में किसी न किसी नायक नायिका का उदाहरण खोजा जा सकता है और खोजा गया है, परंतु इन पुस्तकों को कोई रीति ग्रंथ नहीं कहता। बिहारी सतसई को रीति ग्रंथ सिद्ध करने के लिए मुख्यतः दो बातें प्रस्तुत की गई है, नैक्षिक वर्णन और नायक नायिका भेद चित्रण। अब आइए इनकी वास्तविकता का पता लगावे। लाला भगवान दीन ने बिहारी बोधनी में दोहों के कुछ अनुक्रम बांधे हैं, जिनमें उपर्युक्त दोनों बातों का सन्निवेश हो जाता है। पहले नैक्षिक वर्णन का औचित्य ही देखें। बिहारी बोधिनी के अनुसार नक्षिक का क्रम पहले शतक के 33वें दोहे से प्रारंभ होता है, फिर दूसरे शतक के 113वें दोहे तक चलता चला जाता है। इसके अंतर्गत जिन कई अंगों तथा आभूषणों का वर्णन होता है वे निम्नलिखित हैं: केस, मुख पर बिखरी लट, वेणी, टीका, बिंदी, भौह, नयन, नयन सैन, नासिका, कपोल, श्रवण, अधर, चिबुक, डिठौना और मेहंदी। किंतु वस्तु के वर्णन में कितने दोहे रखे गए हैं उनकी क्रमबद्ध तालिका देखिए। केस के लिए 4 दोहे, लट का 1 दोहा, वेणी 1, टीका 1, बिंदी 7, भौ 3, नयन 35, नासिका 6, कपोल 1, श्रवण 1, अधर 1, चिबुक 4, डिठौना 2, मुख 1, चिबुक 2, हास्य 1, कुछ 1, कटी 2, जंघा 1, मोरवा 1, एड़ी 2, पायल 1, अनवट 1, पगतल 1। क्या इसे नक्षिक वर्णन माना जा सकता है? इसमें कुछ अंगों के वर्णन में व्यतिक्रम हो गया है और कुछ अंग छूट गए हैं। व्यतिक्रम के संबंध में रीति प्रेमी सहृदय कह सकते हैं कि इसके लिए बिहारी नहीं लाला जी जो दोषी हो सकते हैं, लेकिन इस वर्णन में दांत, ग्रीवा और हाथ जैसे प्रमुख अंग छूट गए हैं, इसके लिए कौन दोषी ठहरेगा? इससे स्पष्ट है कि नक्षिक वर्णन को दृष्टि में रखकर नायिका ने नक्षिक वर्णन नहीं किया है। नायक नायिका भेद की परीक्षा करने पर भी हम उपर्युक्त निष्कर्ष पर ही पहुंचते हैं। एक ने जिस दोहे में जिस मनोनुकूल नायिका को ढूंढ निकाला है वह दूसरे को मान्य नहीं है। अभी हाल में ही प्रकाशित पुस्तक बिहारी और उनका साहित्य, यह है डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा की। मैं मध्या का उदाहरण पेश करते हुए निम्नलिखित दोहा उद्धृत किया है: दुरत न कूच बिच कंचुकी, चुपरी सारी सेत, कभी आकन के अर्थ लो प्रगट दिखाई देत। आचार्यों ने मध्या की स्थिति मुग्धा और प्रौढ़ा के बीच मानी है। इसमें लज्जा की कुछ कमी और काम की कुछ अधिकता होने लगती है। दूसरे शब्दों में इसमें लज्जा और काम समान रूप में रहते हैं। क्या उपर्युक्त दोहे में इसी प्रकार की नायिका की व्यंजना होती है? लाला जी ने इसे कंचुकी के वर्णन के अंतर्गत रखा है और रत्नाकर जी ने अंकुरित यौवना के अंतर्गत। उस पुस्तक से ही प्रौढ़ा का एक उदाहरण लीजिए: कुछ गिरी चढ़ी अति थकित, हुए चली डीठी मुहचार, फिरी न टरी परिय रही, परी चिबुक की गाड़। प्रौढ़ा काम कला में अति प्रवीण मानी जाती है। मध्या की अपेक्षा उसमें लज्जा की भावना और भी कम हो जाती है। वह प्रिय के साथ काम क्रीड़ा में निसंकोच संलग्न दिख पड़ती है। भला यह दोहा किस प्रकार प्रौढ़ा का उदाहरण माना जा सकता है। अंग परिवर्तन को ही दृष्टि में रखकर नायिका भेद का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। मुग्धा, मध्या, प्रौढ़ा वैजन अवस्थाएं ही नहीं, बल्कि इनके मूल में लज्जा और काम विकार का न्यूनाधिक्य भी अनुस्यूत है। अधिक वय की होकर भी अपने अंग परिवर्तन के बावजूद भी कोई मध्या, मुग्धा या प्रौढ़ा मध्या हो सकती है। इस तरह इसके विपरीत भी समझना चाहिए। मनोवैज्ञानिकता का विचार न करने के कारण इस तरह की गड़बड़ी का हो जाना स्वाभाविक है। यह सब कहने का मेरा तात्पर्य इतना है कि इस तरह सत्सई में नायिका भेद ढूंढ निकालना न्याय नहीं कहा जा सकता है। यदि ऐसा करना होता तो इन दोहों के साथ लक्षण जोड़ देना किसी के लिए कोई मुश्किल काम ना था। तो क्या बिहारी की ऐतिहासिक चेतना में सत्सई की दीर्घ परंपरा का अनुशीलन आकलन से निहित है और वह उस परंपरा को आगे बढ़ाती है? इसका आंशिक उत्तर पीछे दिया जा चुका है। फिर भी यहाँ यह कहना असंगत नहीं कि बिहारी ने उस परंपरा को एक ऊंचाई दी। युगीन व्यवस्थाओं तथा एक दीर्घ काव्य परंपरा के कारण उन्हें अनेकानेक रूढ़ियों को भी अपनाना पड़ा। यह एक अलग बात है कि जिन ऊहात्मक उक्तियों के लिए बिहारी को कोसा गया है वे उन्हें परंपरा से प्राप्त हैं। जिन ऊहात्मक उक्तियों के लिए बिहारी को बहुत कोसा गया है वह इस तरह की ऊहात्मक उक्तियां उनके पूर्ववर्ती काव्य में ही प्राचीन परंपरा से दिखाई पड़ती हैं। चुडल्लव चुराणी होई सह मुद्धि कवोल निहितउ सासा नल जाल झलकउ वाह सलील संसितउ। मुग्धा की श्वासाग्नि में और वाष्प जल से तपकर चूड़ियां चूर चूर हो जाएगी। मुग्धा अपने गालों पर हाथ रखकर शोक मुद्रा में बैठी हुई है। वह श्वास की ज्वाला तथा वाष्प बनते हुए अश्रुओं के ताप से चकनाचूर हो जाएगी। दूसरा, बल्यावली निवड़न भयेण घन उद्भव जाई बल्लह बिरह महादह हो थाह गवेसई नाई। कार्स्य के कारण नायिका की बल्यावली की गिरने की आशंका हो गई है, इसलिए वह अपनी भुजाओं को ऊपर उठाए हुए चली आ रही है। ऐसा लगता है मानो प्राण वल्लभ के विरह महोदधि की थाह ले रही है। अब बिहारी की कुछ उक्तियां देखिए। पलनी प्रगटी बरूनिनी बढ़ी नहीं कपोल ठहरात असुआ परिछतिया छिनक छनछनाई छिपिगात। दूसरा, सुनत पथिक मुह महानिसी लूवे चलत उही गाम बीन बुझे बिनही कहे जियती बिचारी बाम। खंडता और मान प्रसंगों की चर्चा आगे के अध्याय में की गई है। बिहारी ने विदेशी प्रभाव को भी अपने ढंग से ग्रहण किया, पर उसकी भी कुछ रूढ़ियां जो संख्या में कम ही है सत्सई में सन्निविष्ट हो गई हैं। फारसी उर्दू साहित्य में उल्लिखित कतरे का दरिया होना, कलेजे का चाक होना, खून खराबी आदि को भी बिहारी सत्सई में देखा जा सकता है। हिंदी के मुसलमान कवियों में यह परंपरा पहले ही चली आ रही थी। उसका प्रभाव मीरा जैसे भक्त कवियों पर भी पड़ा। उसे बिहारी का ग्रहण करना अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता। गोपिन की असुवनी भरी सदा असोस अपार डगर डगर न होए रही बगर बगर के बार। उद्धव श्री कृष्ण से कहते हैं कि ब्रजमंडल के प्रत्येक मार्ग में घर घर के द्वार पर गोपियों के आंसुओं से भरी हुई कभी न सूखने वाली अपार नदी बन गई है। गनीमत यह हुई कि नाव चलाने की व्यवस्था नहीं की गई। अब उर्दू के एक शेर पर गौर फरमाइए। गौर से कतरे की जानीब जो नजर की तो खुला हम इसे कतरा गलत समझे थे दरिया है यही। दोनों में कितना साम्य है। बिहारी की एक दूसरी उक्ति देखिए। करी बिरह ऐसी तऊ गैल न छाड़त नीचू दीने हूँ चश्मा चखणी चाहे लहे न मीचू। कार्सी का बड़ा ही चमत्कारिक दृश्य है। फारसी उर्दू की परवर्ती परंपरा से इसकी तुलना कीजिए। मर गया सदमय यक जुम्बिसे लपसे गालिब नातवानी से हरीफे दमय इंसा न हुआ। यह प्रसिद्ध है कि ईसा मसीह कुछ शब्द कुम्बह इजनल्लाह कहते थे और उसके प्रभाव से मुर्दों में प्राण आ जाते थे। गालिब का कथन है कि मैं इतना दुबला हो गया था कि प्रियतम रूपी मसीहा के होंठ कुछ कहने को हिले नहीं कि मैं उसकी चोट से मर गया। कहना ना होगा कि गालिब ने बिहारी को बहुत पीछे छोड़ दिया। यह थी भी तो गालिब के पुरखों की परंपरा। सुकुमारता का एक उदाहरण और देकर मैं इस प्रसंग को समाप्त करूंगा। छाले परिबे के डरनी सके न हाथ छुआए, झझखत हिए गुलाब के झवा झवैयत पाए। छाले पड़ने के डर से नाइन नायिका के पांवों को हाथों से छूने में हिचकिचाती है। और गालिब के मासूक की नजाकत देखिए, इस नजाकत का बुरा हो वो भले है तो क्या, हाथ आए तो उन्हें हाथ लगाए न बने। यहां भी कदाचित छाले पड़ने के डर से ही मासूक का स्पर्श नहीं किया जाता। पांडित्य प्रदर्शन। परंपरा का यह रूढ़ अंश बिहारी में एक प्रकार से और मिलता है, निजी जानकारी और पांडित्य प्रदर्शन के रूप में। ऐतिहासिक चेतना के लिए आवश्यक है कि परंपरा में रक्षित ज्ञान विज्ञान की अच्छी जानकारी प्राप्त की जाए, पर उसका उपयोग निजी जानकारी के प्रदर्शन के रूप में नहीं होना चाहिए। यह पांडित्य और जानकारी जब तक चेतनागत नैरंतर्य का अनिवार्य अंग नहीं बन जाती, तब तक कवि की कारित्री प्रतिभा उनका काव्योचित उपयोग नहीं कर सकती। बिहारी के कुछ दोहों के आधार पर उन्हें चोटी का गणितज्ञ, वैद्य या ज्योतिषी मान लेना अर्थ का अनर्थ कर बैठता है। यह बात अब इतनी घिसपिट गई है कि उसका उल्लेख भी बासीपन की गंध से खाली नहीं है। कविता में जिस निर्व्यक्तिकता की चर्चा की जाती है, उसका मतलब केवल निजी अनुभूतियों से पलायन नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व से भी पलायन है। निजी जानकारियां या पांडित्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का अंग है, इसलिए सच्चे कवि को, लोक हृदय की पहचान करने वाले कवि को उससे पलायित होना होगा। इस प्रकार का पांडित्य प्रदर्शन साहित्य के किसी भी क्षेत्र में अभिनंदनीय नहीं कहा जा सकता। हिंदी के कुछ वे उपन्यास जिनमें मनोविश्लेषण शास्त्र के सिद्धांतों का अथवा इतिहास के तत्वों का बाहुल्य हो गया है, उच्च कोटि की कृतियों में नहीं गिने जाते। तुलसीदास के प्रकृति चित्रण में ज्ञानमूलक अंश अप्रस्तुत के रूप में जुड़ गया है, वह काव्य सौंदर्य को विकृत कर देता है। कवि को अपनी निजी विशेषताओं का चित्रण साहित्य का शोभन उपकरण नहीं माना जा सकता। इस तरह के अकाव्योचित अंश बिहारी में देखे जा सकते हैं। पहला, कहत सबै बेदी दिए आंख दस गुनो होत, तिय लिलार बेदी दिए अगणित बढ़त उदोत। दूसरा, मैं लखी नारी ज्ञान करी राख्यो निर्धार, यह वही रोग निदान वह वेद औषधि वह। तीसरा, तिय तिथि तरुण किशोर बै पुण्य काल समदीन, काहू पुण्यनी पाइयत बैस संधि सक्रीण। चौथा, सनी कज्जल चख झक लगन उपज्यो सुदिन सनेह, क्यों नृपति हुए भोगवै लही सुदेश शब्द है। उपर्युक्त उदाहरणों में गणित वैद्यक और ज्योतिष के जिन मामूली सिद्धांतों का सहारा लिया गया है, उनका साध्य कुछ दूसरा ही है। पहले दोहे में कवि का मुख्य अभिप्राय बिंदी लगाने के कारण नायिका की बढ़ी हुई शोभा का वर्णन करना है। दूसरे में नायक के प्रति नायिका के प्रेम की व्यंजना उसका अभिप्रेत है। तीसरे में वह संधिगत सौंदर्य ही उनका मुख्य वर्ण है। चौथे में सुंदर शरीर के भोग की सलाह दी गई है। यहाँ पर साधन स्वयं साध्य हो गए हैं, इसलिए समस्त दोहे काव्य सौंदर्य से अछूते रह गए हैं और पांडित्य प्रदर्शन उभर कर सामने आ गया है। कविता का संबंध पांडित्य से नहीं, संवेदना से है। परंपरा बनाम मौलिकता। ये सब परंपरागत वे रूढ़ियां हैं जिनके कारण बिहारी का काव्य त्रुटिपूर्ण हो गया है, पर बिहारी की ऐतिहासिक चेतना के वे पक्ष भी हैं जो उनके काव्य को पूर्ववर्ती काव्य परंपरा की अपेक्षा अधिक रसाद्र और चमत्कारक्षम बनाने में समर्थ हैं। इस चेतना को ठीक से न समझने के कारण जो लोग अर्थापहरण या रूपांतरण दिखाने के लिए आलोच्य कवि की रचनाओं और पूर्ववर्ती कवियों की रचनाओं में साम्य खोजते फिरते हैं, उनकी समझ को क्या कहा जाए। गोस्वामी तुलसीदास की नाना पुराण निगमागम सम्मतम पंक्ति को ले उड़ने वाले लोगों ने मानस में आने वाले रूपांतरणों को का लंबा चौड़ा लेखा प्रस्तुत किया है। बिहारी भी इस इल्जाम से बरी नहीं है। परंपरा को छोड़कर मौलिकता का कोई अर्थ नहीं है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक वस्तु विशेष को मौलिकता की संज्ञा दी है। पुरानी बातों में नयापन ले आना ही मौलिकता है। आनंद वर्धनाचार्य का कहना है, दृष्टिपूर्वा अपिहार्थो काव्य रस परिग्रहात् सर्वै नवा इवा भांति मधुमस इव द्रुमः। पहले के अर्थों को रसंचार द्वारा नवीन बना देने में ही मौलिकता है, जैसे मधुमास पुराने वृक्षों को नया बना देता है। टी.एस. एलियट उसी तथ्य को दूसरे शब्दों में कहते हैं, इट इन्वॉल्व्स अ गुड डील विच कैन बी कॉल्ड तब्बू दैट दिस रोड इज यूज्ड इन आवर टाइम इन एन एक्सक्लूसिवली derogatory sense is to be mere curiosity of some significance. We become conscious of these items or conscious of their importance usually only after they have begun to fall into a desuetude, as we are aware of the leaves of a tree when the autumn wind begins to blow them off, when they have separately ceased to be vital. Energy may be wanted at that point in a frantic endeavor to collect the leaves as they fall and gum them onto the branches, but the sound tree will put forth new leaves and the dry tree should be put to the axe. We are always in danger in clinging to an old tradition or attempting to re-establish one of confusing the vital and the unessential, the real and sentimental. मधुमास में जीवंत वृक्ष अपने जीर्ण पत्तों को झाड़ देते हैं, उनके स्थान पर लाल लाल नए कोपल उगने में समर्थ होते हैं। मृत पत्रों को डालों से चिपका देना परंपरा के मृत तत्वों को चिपका देना है, उन्हें पुनः स्थापित करने का प्रयास है। पर वास्तविक कवि जीवंत और अजीवंत, वास्तविक और भावुकता परक तत्वों की पहचान में दक्ष होता है। इस प्रकार की दक्षता प्राप्त करना ऐतिहासिक चेतना प्राप्त करना है। बिहारी में इसकी बहुत कमी नहीं है। यह दूसरी बात है कि स्वयं आलोचक इन तत्वों को पहचान कर बिहारी के मत्थे थोप दे। सत्सईयों की परंपरा में जो पहला ग्रंथ दिखाई देता है वह हाल की है, वह है हाल की गाथा सप्तसती। इस परंपरा का दूसरा विशिष्ट ग्रंथ है अमरुक शतक और तीसरा गोवर्धन की आर्या सप्तसती। यूं तो इस परंपरा में छोटे मोटे बहुत ही प्रयास हुए हैं। बिहारी ने इन तीनों ग्रंथों के अतिरिक्त अन्य अनेक सूत्रों का भी अनुशीलन किया होगा, ऐसा उनकी रचना से प्रकट होता है, किंतु अनुशीलन का तात्पर्य रूपांतर नहीं है। उन्होंने पूर्ववर्ती ग्रंथों से बहुत कुछ लिया है, पर उन्हें अपना बनाकर लिया है, उन्हें अपनी प्रतिभा के स्पर्श से नया बना दिया है। गाथा का एक पद्य देखिए, अव्यो टुक्कर आरक पुणव वितंति करेसी गमणास अज वेण होती सरला वेणिय तरंगिणो चिवरा अव्व दुष्कर कारक पुनरपि चिंताम करोसी गमनस्य अद्यापि न भवन्ति सरला वेण्यास्त्रंगिनाश्चुकुरः। संस्कृत रूपांतर, अर्थात हे दुष्कर व्यवहार करने वाले, नायिका के केस जो तुम्हारे प्रवास में रहने पर नहीं बांधे जा सके अभी तक उलझे हुए हैं, वे सीधे नहीं हो पाए और तुम पुनः प्रवास की चिंता करने लगे। अब सत्सई का एक दोहा देखिए, अजौ न आए सहज रंग बिरह दुबरे गात अब ही कहा चलायत ललन चलन की बात। इन पदों पर पंडित पद्म सिंह शर्मा की टिप्पणी है, गाथा का भाव है कि वह तुम भी कोई अजीब हो, फिर तुम्हें जाने की सूझी या क्या गजब करने लगे हो, अभी तो वेणी बांधने से गुलझट पड़े केस भी सुलझकर सीधे नहीं हो पाए। निसंदेह गाथा अपने ढंग से बहुत ही उत्कृष्ट है। गाथाकार ने किसी को कुछ कहने की गुंजाइश नहीं छोड़ी। अद्यापि न भवन्ति सरलास्त्रंगिनाश्चिकुरः, बात बहुत ही साफ और सीधी है पर तो भी चमत्कार से खाली नहीं। इसका बागपन चित्त में चुपता है, बहुत ही मधुर बात है। पर बिहारी लाल भी तो एक ही काइयां ठहरे, वह कब चूकने वाले हैं, पहलू बदल कर मजबून को साफ ले ही तोड़े। अजौ न आए सहज रंग बिरह दुबरे गात, वाह उस्ताद क्या कहने हैं, क्या सफाई खेली है, काया ही पल भर में कोई पहचान सकता है। वहां गाथा में केवल गुलझट पड़े केसी थे, यहां बिरह दुबरे गात है। केशों में सरलता आने की अपेक्षा दुबरे गात में सहज रंग का वापस आना कहीं अधिक वांछनीय और महत्वपूर्ण कार्य समझा जा सकता है। फिर अब ही कहा चलायत ललन, चलन की बात में कितना माधुर्य है, छेका अनुप्रास कितना अच्छा है। इसी दोहे के संबंध में बिहारी और उनका साहित्य में कहा गया है कि गाथा के रूपांतर के अतिरिक्त कुछ या कुछ भी नहीं है। अपनी प्रशंसात्मकता आलोचना के बावजूद मानना होगा कि जाने या अनजाने शर्मा जी को ऐतिहासिक चेतना की अधिक परख है। अपने टिप्पणी के अंत में बिहारी की विशेषता को पकड़ते पकड़ते वे रह गए हैं, पर से गाथा का रूपांतर मात्र लेने में औचित्य नहीं है। सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर पता लगेगा कि गाथाकार ने परंपरा की रूढ़ी को प्रश्रय दिया है। प्रिय के वियोग में केशों का प्रसादन न करना सत्य होने पर भी रूढ़ी ही है, किंतु बात जिस ढंग से कही गई है वह चमत्कारिक अवश्य है, लेकिन बिहारी के उपर्युक्त दोहे में रूढ़ी का सहारा नहीं लिया गया है, अतः उसमें जो ताजगी और प्रभावोत्पादकता है वह गाथा में नहीं है। केशों का प्रसाधन मानसिक व्यापार से संबद्ध होने पर भी एक बाह्य व्यापार है, पर शरीर के दुर्बल और उसके विवर्ण का सीधा संबंध मानसिक व्यापारों से है जो मन पर सीधे चोट पहुंचाते हैं। गाथाकार की अपेक्षा बिहारी जहां तक उपर्युक्त दोहे का संबंध है पाठकों से अधिक व्यापक मानसिक संगठन की मांग करते हैं, इसलिए बिहारी की व्यंजना अधिक गंभीर और संवेदनापूर्ण बन गई है। गाथा का एक सुरति पीड़िता का चित्र देखिए, सही सही ती तह तेण रामिया सुर अद्वैन पम्मा असिरी साई वजह से जायाई अंगाई सहतय सहतय इति तथा तेन रमिता सुर तदु विदर्घ देन प्रमलान सिरिसाणिव यथास्या जातन्य अंगानी। बिहारी का दोहा यो है, यो दलम लयित दिदई दई कुसुम से गात कर धर देखो धर हरा अजौ न उरको जात। शर्मा जी तो इतना ही कहकर रह गए कि इस प्रकार बिहारी लाल जी इस मैदान में गाथाकार और केशव दास से बहुत आगे बढ़ गए। क्या अच्छा संस्कार किया है, मजबून छीन लिया है। उन्होंने संस्कार की बात स्वीकार की है पर संस्कार के स्वरूप की चर्चा नहीं की, किंतु बिहारी और उनका साहित्य में उक्त पदों पर की गई टिप्पणी देखिए। इस भाव को बिहारी ने ज्यों त्यों अपनाया है। सुरथ दुर्विध दग्ध और निर्दयी शब्द एक से वजन के हैं। दोहे में सामान्य कुसुम द्वारा नायिका के अंगों का सौकुमार्य प्रकट किया है, किंतु गाथाकार ने सिरिस पुष्प का प्रयोग किया है जो कदाचित पुष्पों में कोमलतम होता है। महाकवि कालिदास ने सिरिस कुसुम को ही कोमलता का प्रतीक प्राय माना है। दोहाकार ने दल मलियत कहकर अंगों के अत्यंत पीड़न का अभिधा द्वारा उल्लेख किया है। गाथाकार ने उपमान सिरिस के साथ मलान विशेषण जोड़कर उनकी व्यंजना की है। दोहे में उर का धरहरा सूरत जन्य आया साधिक्त का सूचक है, तो गाथा में सहते सहते विप्सा सूरत की दीर्घता की द्योतक है। डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा से मैं अपनी असहमति प्रकट करते हुए कहना चाहूँगा कि किसी भी भाव को दूसरे श्रेष्ठ कवि द्वारा ज्यों का त्यों अपनाना असंभव है। उपर्युक्त टिप्पणी में स्पष्टता गाथाकार को कई अंशों में बिहारी से श्रेष्ठ ठहराया गया है। ऐसी स्थिति में भला बिहारी गाथा का भाव ज्यों का त्यों कैसे अपना सकते हैं। उससे यह भी प्रकट होता है कि सिरिस कुसुम को जो सुकुमारता का प्रतीक माना गया है, नायिका के सौंदर्य के लिए अप्रस्तुत के रूप में लाया गया है। म्लान विशेषण से उसका काव्य सौंदर्य और भी बढ़ गया है। आरंभ में यह भी कहा गया है कि निर्दयी और सूरत विदग्ध एक से वजन के हैं। निर्दयी और सूरत विदग्ध एक कैसे माने जा सकते हैं। विदग्ध में जो चतुरता है, क्रीड़ा पड़कता है और नागरता के भाव सन्निहित है, वे निर्दयी में तो आने से रहे। निर्दयी की व्यंजना दोहरी है। एक ओर तो इससे नायिका के प्रति गहरी सहानुभूति प्रकट की गई है, दूसरी ओर नायिका को उसकी कठोरता के कारण उपालंब सा दिया गया है। सिरिस कुसुम का कुमला जाना और बात है तथा किसी भी पुष्प को हाथों से दलमल कर मलिन बना देना और बात। केवल शास्त्र विहित प्रतीक रख देने से कोई काव्य श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता। बिहारी ने यथार्थ को अधिक निकट से पकड़ा है। गाथा की पहली पंक्ति उतनी व्यंजक नहीं है जितनी बिहारी की दूसरी पंक्ति। अमरु शतक का एक अति प्रसिद्ध श्लोक देखिए, शून्यम वास गृहम विलोक्य सैना दुत्थाय किंच छनय निद्रा व्याज मुपागतस्य सुचिरं निर्वर्णम्य पत्युर्मुखं विश्रब्धं परिचुंबय जात पुलका मालोक्य गंडस्थलिं लज्जान मुखी प्रियेण हस्ता बाला चिरम चुंबिता। कुछ इसी तरह का मिलता जुलता भाव बिहारी ने अपने निम्नलिखित दोहे में प्रकट किया है। मैं मिसहा सोयो समझी मुँह चुम्यो ढिक जाए हस्यो खिस्यानो गर गह्यो रही गरह लपटाए। पंडित पदम सिंह शर्मा ने अपने तरीके से बिहारी की प्रशंसा की है, किंतु कौन अच्छा है कौन कम अच्छा यह नहीं कहा जा सकता। अभिव्यक्त भावों में बहुत समानता होने पर भी दोनों की अलग अलग विशेषताएं हैं। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र से काफ़ी दूर तक सहमत हुआ जा सकता है कि रस सिद्ध कवि बिहारी में अथवा स्वच्छंद कवि घनानंद आदि में पिष्ट पेषण या चर्वित चवर्ण नहीं है। श्रेष्ठ कवियों में चर्वित चवर्ण हो ही नहीं सकता, क्योंकि वे पुरानी उक्तियों को नवीन बना देने में सर्वथा समर्थ होते हैं। अमरु शतक और बिहारी सतसई के एक एक पद और लीजिए। यातः किम न मिलन्ति सुंदरी पुनस्थिताम त्वया मत कृते नो कार्या नित्राम कृसासी कथयतेव्यम सवास्पे मई लज्जा मंथर तारकेण निपतपीता श्रृणाम चक्षुषा दृष्टवा मा हसितेन भावी मरणोत्साह हसत्या सुचिता। बिहारी का दोहा है। बिलखी डबकौहे चखनी तिय लखी गवन बराए प्रिय गहबरी आए गरे राखी गरे लगाए। अमरु का नायक अपने सखा से कहता है, मैंने यात्रा के समय प्रिय से कहा कि तू चिंता मत कर, क्या जाने वाले पुण्य मिलते नहीं, तू तो यूं ही दुबली है, कहते कहते मेरी आंखें भर आई। लज्जायुक्त मंथर तारा बाली आंखों के पतनोन्मुख आंसुओं को रोककर उसने अपने अमंगल सूचक मरण की सूचना दी। मैंने अपना गमन रोक दिया, पर बिहारी ने अपने दोहे की लघु सीमा से उसी भाव को नए ढंग से कहा है। निश्चय ही अनुभवों के सहारे बिहारी ने भावों को काफी गंभीर बना दिया है। आर्य सप्तसती के भावों की छाया भी बिहारी के दोहों में मिलेगी, पर उसे बिहारी की मौलिकता कुंठित नहीं हुई है। भ्रामम भ्रामम स्थित्या स्नेहे तव पैसी तत्र तत्रैव आवर्त पतित नौका मन्या विनय मपनीय गोवर्धन। फिरी फिरी चित उत ही रहत टूटी लाज की लाओ अंग अंग छवि झौर में भयो भौर की नाव। बिहारी की है। सिद्ध हेमचंद्र का एक दुहा देखिए। भमरा एथुवी लिम्बडई केवी दियहडा विलंबू घन पत्तलु छाया बहुलु फुल्लई जाए कयंबू। हे भौरे सघन पत्र और छाया बहुल कदंब जब तक नहीं फूल जाता तब तक यही ठहर। इससे मिलता जुलता बिहारी का दोहा है। इही आस अटक्यो रहे अली गुलाब के मूल हुए बहुरी बसंत ऋतु इन डारनी वह फूल। इनकी अलग अलग विशेषताओं को देखते हुए को बड़ छोट कहत बड़ दोसू की कल्पना जागृत होती है। सिद्ध हेमचंद्र ने बसंत का नाम नहीं लिया है, इससे उसकी व्यंजता अधिक बढ़ गई है, पर इससे बिहारी की अपनी मौलिकता में कमी नहीं आई है। जिन प्राकृत संस्कृत और अपभ्रंश के काव्यों का उल्लेख किया गया है उनसे बिहारी का प्रभावित होना स्वाभाविक है, क्योंकि बिहारी सिरे उस परंपरा की अगली कड़ी है। ये हिंदी के पूर्ववर्ती कवियों से भी प्रभावित है, मुख्यतः केशव सेनापति और सुंदर से। कहूं बनबाल कहूं गुंजन की माल कहूं संग सखा ग्वाल ऐसे हाल भूली गए हैं कहूं मोर चंद्रिका कहूं लकुट पीत पट मुरली मुकुट कहूं न्यारे डारी दए हैं कुंडल अडोल कहीं सुंदर न बोले बोल लोचन अलोल मनो कहूं हरी लय हैं। घूंघट की ओट है के चित्त्यो किचौट करी लालन तो लोट पौट तब ही ते भये हैं। सुंदर कहा लड़ैते दृग करे पड़े लाल बिहाल कहा मुरली कहूं पीत पटु कहूं मुकुट बनबाल। ये बिहारी का दोहा है। ताही समय औचक हो काहू आनी पाती दिन ही देखत ही सेनापति पाई प्रीति मती की माथे लय चढ़ाई दो दृगनी लगाई चूमी छाती लपटाई राखी पाती प्राणपति की सेनापति। करले चूमी चढ़ाई सिर उर लगाई भुज भेटी लही पाती पिय की लखती बाचती धरती समेटी। बिहारी लाल का दोहा। यहाँ पर कुछ तुलनात्मक पदों को व्यवस्थित करने का मेरा अभिप्राय केवल इतना ही था कि बिहारी ने अपने पूर्ववर्ती कवियों के भावों को अपने ढंग से अपनाया जरूर है, किंतु वे या तो प्रतिबिंब कल्प हैं या परिकर बंध की भिन्नता के कारण प्रवेश सदृश। ऐसा करना किसी तरह का अपराध नहीं माना जा सकता। प्रायः सभी कवियों ने ऐसा किया है, पर शर्त यह है कि ऐसा करने में पुनरावर्तन न हो, पृष्ठ पेषण न हो। यह ऐतिहासिक चेतना का विशिष्ट और अपरिहार्य अंग है। इस सिलसिले में टीएस इलियट के नाम से यदि किसी को चिढ़ हो तो वह शौक से आनंद वर्धनाचार्य को याद कर सकता है। ता एव पद विन्यासा ता एवार्थ विभूतयः तथापि नव्यम भवति काव्यम ग्रथन कौशलात्। यह दूसरा शीर्षक समाप्त होता है। अब तीसरा शीर्षक है बिहारी के प्रेम का स्वरूप।